जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो हम पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी नरसिम्ह देव के आवेश में आए हुए थे श्रीवास पंडित के घर में। तो श्रीवास पंडित नरसिम्ह देव की पूजा कर रहे थे, अपनी पूजा में व्यस्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं जो अभी नरसिम्ह देव के आवेश में हैं, श्रीवास पंडित के घर में लाथे मारते और कहते अरे श्रीवासिया देखो पीछे मुड़ के देखो, जिसकी पूजा कर रहे हो मैं साक्षात यहाँ खड़ा हूँ। तो फिर श्रीवास पंडित देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मेरी स्तुति करो। तो कई प्रकार से वो अरे बोल बिल्कुल शांति। तो चैतन्य महाप्रभु कई प्रकार से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि मेरे स्तुति करो। तो श्रीवास पंडित कई प्रकार की स्तुति करते हैं और उस स्तुति को हम कंटिन्यू करेंगे। तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि बलिते अविष्ट हैला पंडित श्रीवास ऊर्ध्व बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। तो जो श्रीवास पंडित है चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते करते प्रेमावेश में आ गए और दोनों अपनी भुजाएं उठाकर वो लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। गड़ागड़ी जाय भाग्यवंत श्रीनिवास देखिया अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश। तो श्रीनिवास पंडित जो श्रीवास पंडित है, एक तो श्रीनिवास और श्रीवास, तो महाप्रभु के समय श्रीवास पंडित थे और श्रीनिवास आचार्य आए थे बाद में जो नरोत्तम दास ठाकुर के संगी थे। तो कई बार ये दोनों के नाम हमें थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप चैतन्य भागवत में पढ़ोगे तो आपको श्रीनिवास शब्द आया है पयारों में श्रीवास पंडित के लिए भी। तो चैतन्य महाप्रभु के उस रूप को देखकर वो लोटपोट होने लगे और आगे वो कहते हैं कि अद्भुत सुखायला श्रीवास शरीर दुबिले न विप्रवर आनंद सागरे। तो श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के उस रूप को देखा और बहुत ही अधिक वो सुख अनुभव करने लगे और वो आनंद सागर में डूब गए। हसिया सुने न प्रभु श्रीवास तेर स्तुति सदय हैया बले श्रीवास तेर प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास की स्तुति को हंसते हुए सुनते हैं और बहुत ही दया भाव प्रकट होकर श्रीवास पंडित को इस प्रकार से कहते हैं श्रीपुत्र आदिजत तुमार बाड़ेर देखो कामार रूप करह बाहिर। तो कहते कि तुम्हारे घर में जितने भी स्त्री हैं पुत्र हैं जो भी हैं उनको घर के बाहर ले आओ और उनको सबको मेरे रूप को दिखाओ, देखने दो मेरे रूप को। सस्री कहया पूजा चरण अमार वर माग जन इच्छा मने ते तुमार। और आपने पत्नी के साथ आप आओ और मेरे चरणों की पूजा करो और जो भी वर तुम्हारी मांगने की इच्छा है वो वर तुम मुझसे मांगो। प्रभु रैया श्रीवास पंडित सर्व परिकर संगे आई लात्वरित। तो जैसे प्रभु की आज्ञा मिले तो श्रीवास पंडित तुरंत अपने सारे परिवार के साथ बाहर आते हैं। विष्णु पूजा निमित्त जते का पुष्प छिला सकल प्रभु रे साक्षात दिला। तो अभी ये विष्णु की पूजा कर रहे थे जब निमाय पंडित का आगमन हुआ था नरसिंहदेव के आवेश में वो आए थे, तो उस समय जितने भी विष्णु पूजा के लिए पुष्प उन्होंने एकत्रित किए थे वो सारे विश्वंभर के चरणों में अर्पित करते हैं। हरी बोल। गंध पुष्प धूप दीप्य पूजे श्री चरण सश्री कहैया विप्र करे न क्रंदन। तो जो हम षोडश उपचार की विधि का पालन करते हैं डेटी वर्शिप में, तो उसी के अनुसार ही उन्होंने गंध पुष्प धूप दीप चामर इन सब के साथ विश्वंभर की पूजा की, और अपने पत्नी और स्वयं ही वो रोने लगे। भाई पत्नी दास दासी सकल लैया श्रीवास करे न काको चरण पड़िया। तो श्रीवास पंडित अपने भाई, अपने जो पत्नी है, पुत्र है, दास है, दासियां हैं, हम उन सबको लेकर महाप्रभु की पूजा कर रहे थे और उनके चरणों में पढ़कर बहुत ही विनम्रता पूर्वक दीन भाव में आकर उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। श्रीनिवास प्रिय कार्य प्रभु विश्वंबर चरण दिले न सर्व शरीर ऊपर। तो श्रीवास पंडित के बहुत प्रिय हैं विश्वंबर, तो निमाय पंडित विश्वंबर ने सबके शरीर सर के ऊपर अपने चरण रखे। अलक्षित बोले प्रभु माथा ये सवार हसी बोले मोते मोते चित्त हव सभाकार। और क्या आशीर्वाद दिया सबको हंसते हुए, उनके सबके माथे पर अपना चरण रखे और महाप्रभु ने कहा कि आप सबका जो चित्त है हर समय मुझ में लगा रहे हैं। हाँ, कितना वंडरफुल ये है, ये आशीर्वाद है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे तो सार्वम भट्टाचार्य ने देखा कि ये सन्यासी हैं, और गोपीनाथ आचार्य के साथ गया और उन्होंने कहा नमो नारायणा, तो कहते जैसे प्रणाम किया तो कहते कृष्णेर मतिरस्तो, मतलब आपका मन कृष्ण में लगा रहे। तो सार्वम भट्टाचार्य ने कहा कि अरे ये कोई मायावादी सन्यासी नहीं है, ये तो वैष्णव सन्यासी है, क्योंकि कृष्ण में मन लगा रहे ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार से इनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो चित्त है सदा मुझ में लगा रहे। ओंकार गर्जन करे प्रभु विश्वंबर श्रीनिवास संबोधिया बले नगुत्तर। तो जोर से गर्जना करते हुए श्रीवास को संबोधित करते हुए जो विश्वंबर है वो इस प्रकार से बोलते हैं। क्यों, क्या बोलने जा रहे हैं? क्योंकि श्रीवास पंडित के मन में भय था, तो भक्त जो भगवान है वो अपने भक्त के हृदय में भय को नहीं देखना चाहते और हर समय भय को हटाना चाहते हैं। अब देखो कृष्ण लीला में जहां तहां वर्णन आता है, जब कालिया का भगवान ने जब मारे उस कदम वृक्ष से नीचे, तो कालिया के ऐसे लग रहा था सारे ब्रजवासी आ गए थे। पहले तो सारे ग्वाल बाल थे, फिर ब्रजवासियों को पता चला, वो दौड़ते हुए आए बलराम के साथ, और फिर नंद महाराज आए, यशोदा आए, और कृष्ण को देख रहे थे कि कालिया ने अपने शरीर के अंदर उनको लपेट लिया था। तो यशोदा माता नंद महाराज रोने लगे और वो जंप लगाने लगे उसके अंदर, तो सब वैष्णव पकड़ के रखते थे उनको जो ब्रजवासी हैं। तो कृष्ण ने देखा कि इनके हृदय में इतना भय आक्रांत हो गया है, कृष्ण तुरंत कहते अभी नहीं कालिया, अभी इतने नाचे उसके फनों पर कि क्योंकि सहस्त्र फन थे उसके, तो कृष्ण के तो दो ही चरण है, लेकिन आचार्य ने इतना अलग अलग रूप से वर्णन किया है। तो कृष्ण के जो दो चरण इतने तेजी से पड़ रहे थे कि कालिया अपना सर ऊपर ही नहीं कर पा रहा था, और जैसा जैसा पड़ रहे थे कृष्ण के चरण तो इतने कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है देखो, लेकिन वो चरण पड़ रहे थे फिर भी उसके मुंह से विष निकल रहा था, वमन कर रहा था, उल्टिया कर रहा था, बहुत थक गया था। कोई इतनी सॉफ्ट चीज पड़े और छोटा सा ही बालक था और कितना बड़ा कालिया फिर भी इतना कष्ट प्राप्त कर रहा है। और उसके बाद वो सोचते कि अभी रात हो गई, सारे ब्रजवासी गोप सखा और कृष्ण भी सारे वहां सो जाते हैं, कालिया धर के किनारे ही सोते हैं सब लोग। और फिर रात को दावानल, दावानल मतलब आग लग जाती है, तो सब लोग चिल्लाते हैं कृष्ण रक्षा करो, तो देखते हैं कि मेरे भक्तों के हृदय में भय है, कृष्ण तुरंत क्या करते हैं, दावानल को पान करते हैं, पीते हैं। और देखो ये भी भयभीत हो गए थे पांडवगण जब दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। हाँ, दुर्वासा बहुत खुश हो गए दुर्योधन के आदर और सत्कार सम्मान से। उन्होंने कहा, पुत्र बताओ क्या मांगते हो? कहते कि जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, जाके मेरे भाई जो पांडव के, वो तो ईर्ष्यावश कह रहा था, उनको बताया दुर्वासा यदि पांडवों के ऊपर गुस्सा हो जाए तो अपने आप ही पांडवगण खत्म हो जाएंगे, मेरा काटा तो अपने आप निकलेगा किसी और के द्वारा। तो इन्होंने जैसे दुर्वासा को भेजा तो दुर्वासा आए अपने इतने सारे शिष्यों के साथ। तो उस समय अक्षय पात्र जो था द्रौपदी का, सूर्य से जो मिला था, वो यदि खाए तो फिर किसी और, वो जो अक्षय पात्र है वो नया फूड जनरेट नहीं कर सकता था। तो ये उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी ने सबके आखिरी में भोजन कर लिया था। तो आते तो सबके हृदय में भय आ जाता है पांडवों के, द्रौपदी के, कि क्या करें। तो युधिष्ठिर कहते कि आप लोग अभी जरा स्नान करके आइए, उधर स्नान करिए, फिर प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो वो जाते और सबके हृदय में भय था क्योंकि दुर्वासा को नाराज करना मीन्स कठिन है। तो भगवान पांडवों के हृदय में, द्रौपदी के हृदय में भय देखते हैं, तुरंत आ जाते हैं। कहते द्रौपदी आप, मुझे भूख लग रही है, वो आपका जो पात्र लाओ। कहते नहीं अभी तो मैं खा चुकी हूँ। नहीं 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 उसमें कुछ तो है। तो लाते तो एक शाक का थोड़ा सा टुकड़ा था, वो खाते कृष्ण। हाँ, तो ये सब चीजों से हम देखते हैं कि जहां भी भक्त के हृदय में भय आता है भगवान उस भय को निवारण करते हैं। और ऐसी कितनी लीलाओं को आप देख सकते हो कृष्ण लीला में। हम प्रभुपाद को भी भय नहीं था, प्रभुपाद कहते थे कि मेरा श्रद्धा है भगवान के नाम के प्रति। तो इस प्रकार से जहां भी भगवान के भक्तों के हृदय में भय आया है, आप देखो उत्तरा का उदाहरण हम देखते पहले स्कन में, वो तो इतनी भयभीत हो गई थी लेकिन उसने अपने पांडवों की शरण नहीं ग्रहण की। अब वो सीधा कृष्ण को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम, कि मैं साक्षात मृत्यु को देख रही हूँ। इस प्रकार से वो भी कृष्ण तुरंत गदा हाथ में लेकर उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं, रक्षा करते हैं, विष्णुरात नाम पड़ता है परीक्षित का। इस प्रकार से ये जो श्रीवास पंडित हैं उनके हृदय में भी भय था। क्या भय था? क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये सारे जो द्वेषी लोग थे, ईर्ष्यालु थे, वो सब लोग कंप्लेंट करते रहते थे काजी वगैरह के पास कि ये हर समय कीर्तन करते रहते हैं। तो ये सुना था कि दो नाव भर के आने वाली हैं और राजा के सैनिक आने वाले हैं और श्रीवास पंडित को पकड़ के ले जाएंगे, उसके घर का नाश करेंगे। तो श्रीवास पंडित के हृदय में थोड़ा सा भय था। तो महाप्रभु ने ये देखा और भी कई वैष्णव के हृदय में भय था कि राजा की नाव आएगी, सेना आएगी, ले जाएगी। तो फिर महाप्रभु ने क्या किया, उस भय को हटाने के लिए बहुत एक दिव्य लीला अभी करते हैं निमाय चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं, ओहे श्रीनिवास के छु मने भय पाओ सुनी तो माँ धरिते ऐसे राजा ना हो। कहते कि श्रीवास मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में भय है। क्या भय है? कि मैंने सुना है कि तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की नाव आने वाली है। अभी ये किस भाव में है? नरसिम्हा के भाव में है। महाप्रभु इसको हमें स्मरण रखना चाहिए। वो कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड माझे जत जीव वैसे सबर प्रेरकामी अपनार रसे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विश्वंभर कि जितने ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सबको मैं अपनी इच्छा से प्रेरित करता हूँ। मुझे जदि बोला उसे ही राजा रस शरीर है तबे से बलि बेटे है धरी भारत तरे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं राजा के भीतर से ऐसे कार्य करने की उसको प्रेरणा दूंगा तभी तो वो तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा। महाप्रभु कहते मैं प्रेरणा दूंगा तभी तो राजा आएगा। जदि वाये मतन है स्वतंत्र हैया धरी बारे बले तबे मुए चाई हैया। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई कि वो स्वतंत्र रूप से आ सकता है, जब तक मेरे आज्ञा नहीं हुए तब तक वो नहीं आ सकता, या मेरी आज्ञा के बिना वो कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार से विश्वंभर कहते हैं, मुयगिया सर्वागे नौकाय चढ़िमु यही मत गया राजा गोचर हाय मु। अरे उसकी नौका भी आ जाती है या वो स्वयं आ जाता है तो तुम उस नौका पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही उसकी नौका में सबसे पहले जाके चढ़ूंगा और राजा के सामने जाकर प्रकट हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। महाप्रभु कहते हैं, मोरे देखी राजा की रही बे नृपासने, क्या मुझे देखकर राजा अपने आसन पर बैठा रहेगा। महाप्रभु कहते हैं, विभल कर जे पाड़ी मुझसे ही खाने, और मैं राजा के सामने जाकर उसको विभल कर दूंगा, उसको रुला दूंगा। जदिवा ये मतन है जिज्ञास वे मोरे से हो मोरा अभिष्ट सुना कहे तोरे, तो फिर राजा मुझे देखकर कुछ ना कुछ पूछेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि राजा मुझे कुछ पूछे और मैं भी फिर राजा से मेरी जो अभिष्ट है, मेरी जो अभिलाषा है, अब मैं बताऊंगा। सुना सुना ओ हे राजा सत्य मिथ्या जान, जत कमोला का जी तब तोरा आन। कहते हैं कि हे राजा, तुम जो सत्य और झूठ है उसको पहचानो, और तुम्हारे पास जितने भी मुल्लाज हैं उन सबको, जितने काजी मुल्ला हैं उनको सबको मेरे सामने यहाँ लेके आओ अपने दरबार में। हस्ती घोड़ा पशु पक्षी जत तोरा छे, सकल अनह राजा अपना रखा छे। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, महाप्रभु कहते हैं कि मैं ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे पास जितने हाथी हैं, घोड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको पकड़ के लाओ। हाँ, उन काजियों को कहो, एवे है न आज्ञा कर सकल काजी रे अपना र शास्त्र कहे कांदा उसवारे। तो कहते फिर क्या करो, जितने भी आपके काजी मुल्ला आए होंगे उनको बोलो अपना शास्त्र खोलो, कुरान को खोलो, और कुरान के द्वारा उन हाथी घोड़े पशुओं को रुला के दिखाओ। हाँ, वो कहते ऐसा करके दिखाओ उनको, बोलो ना पारे लतारा जदि जते करे थे तबे से अपना व्यक्त करे मुरा जाते। और फिर वो कहते कि यदि राजा के जो मुल्ला काजे ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं अपनी बात को प्रकट करूंगा। संकीर्तन माना कर ये गुलार बोले जत तार शक्ति देख कले। तो उन्होंने कहा देखो, ऐसे लोगों की तुम बात सुनते हो, कौन से लोगों की, जो आपका कुरान पढ़ के इन हाथी घोड़े पशु पक्षी को नहीं रुला सकते, इन लोगों की बात सुनकर तुम कह रहे हो कि संकीर्तन बंद करो। हाँ, तो कहते अभी मैं दिखाऊंगा। हाँ, इन लोगों की बात सुनते हो जो रुला नहीं सकते, इनके पास क्या शक्ति है, लेकिन आपने तो देख लिया वे शक्ति के तो रुला नहीं सकते। मोर शक्ति देखो ये बे नयन भरिया एत बलि मत हस्ती आनी मुधरिया। तो अभी मेरी शक्ति देखो, नयन भरिया पूरे आंखें खोल खोल के देखो। कहते हैं क्या कि मैं एक पागल हाथी को पकड़ के लाऊंगा यहाँ। विश्वंभर कहते हैं, हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया सही खाने कांदा ये मो कृष्ण बोलाइया। और मैं सारे हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको इकट्ठा करूंगा और उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। महाप्रभु कहते हैं, राजा रजते कगन राजा रसहित सभा कांदा ये मो कृष्ण बलि भाल मते। तो कहते इतना ही नहीं, राजा को भी रुलाऊंगा, राजा के जितने भी लोग हैं संगी हैं उन सबको रुलाऊंगा। तो अभी विश्व श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास पंडित सोच सकते हैं कि आप तो केवल बोल रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, जैसे कृष्ण में गीता ने गीता में केवल बोल के दिखाया, उपदेश दे दिए बहुत, लेकिन करके नहीं दिखाया। तो कृष्ण ने सोचा अभी करके दिखाना है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने भगवद गीता का आचरण करके दिखाया। तो पंडित के मन में ये बात आ सकती है कि आप तो केवल बोलते हो हाँ लेकिन करते नहीं हो, ये तो बोल भी सकता है, कोई भी बोल सकता है कि मैं राजा को ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा तो, लेकिन अभी महाप्रभु कहते हैं यहाते वा अप्रत्यय तुम्हें वास्त मने साक्षात करो देख आपन नयने। तो वो कहते हैं कि आपको ये जो बात है ये विश्वास नहीं हो सकता आपके मन में, लेकिन अभी आपने आंखों से देखो है श्रीवास, तुम्हारे आंखों के सामने मैं अभी साक्षात करके दिखाता हूँ। सम्मुखे देखे एक बालिका आपने श्रीवासेर भात्र सुता नाम नारायणी। तो उसी समय क्योंकि श्रीवास पंडित विश्वम्भर की पूजा करने के लिए सारे अपने दासियों को ले आए थे, दासों को ले आए थे, भाइयों को ले आए थे, अब पूरे परिवार के साथ आए थे, चार भाई थे श्रीवास पंडित और उनकी पत्नियां उनके बच्चे सबको वो ले आए थे। और उसी समय उन सबके ग्रुप में विश्वम्भर ने एक छोटी सी बालिका को देखा, नारायणी। तो नारायणी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर की मदर है जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। तभी महाप्रभु क्या करते उनके साथ, अद्यपि वैष्णव मंडले जार ध्वनि चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। तो वृंदावन दास ठाकुर खुद अपनी माता के बारे में लिख रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आज भी हम मतलब सारे गौड़िया वैष्णव में इस बात की घोषणा है, ध्वनि है क्या कि अवशेष चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी, कि चैतन्य के जो उच्चिष्ट खाने वाले कौन है, जो महाप्रभु ने उच्चिष्ट दिया था वो नारायणी है। तो अभी बहुत विशेष ऑर्डर देते हैं, नारायणी जो चार साल की थी जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपना कीर्तन करते थे और ये लीला उन्होंने प्रकट किए थे, तो नारायणी चार साल की थी और वो बोलती हैं, महाप्रभु उसको बोलते हैं सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग चांद। सर्वभूत अंतर्यामी सारे जीवों के अंतर्यामी है चैतन्य महाप्रभु। आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण।